राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 दो त्रेणवे को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। व्याख्यान विवेचन दो तरह का होता है। एक तो शिक्षा होती है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक होती भगवान की लीला। तो ऐसा करना चाहिए न करना चाहिए तो हरेक आदमी का काम की चीज है, परंतु भगवान की लीला एक ऐसी विलक्षण है कोई समझे चाहे न समझे, बड़े भारी पंडित बुद्धिमान हो साफ गंवार हो, सबके अंतकरण को निर्मल करने वाली होती है भगवान की लीला। केवल लीला कहे सुने उपदेश आदेश की बात तो अधिकारी के लिए होता है, मानो तो कहने वाला भी अधिकारी हो सुनने वाला भी अधिकारी हो तो बहुत जल्दी विशेष लाभ होता है, नहीं तो लाभ तो होता ही है, सच्चरसा है लाभदायक है, पर भगवान की लीला तो सत्य स्वाभाविक ही अंतर्गुण को निर्मल करती है। भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दलजसु, जैसे भगवान है, भगवान का नाम है, लीला है, धाम है, ये सब कल्याण करने वाले हैं। नारायण नारायण नारायण। आज कोई बात याद नहीं आ रही, भाई कोई याद ना हो क्या कहें। नारायण नारायण नारायण। भागवत में आया है, दशम स्कंद के आरंभ में ही आता है कि वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा का जो प्रश्न है वो तीनों को पवित्र करता है, पूछने वाले को और कहने वाले को और सुनने वालों को, तीनों को पवित्र करता है। जैसे गंगा जी का जल सबको पवित्र करता है, तत्पाद शरीरम यथा, इस तरह से उनका पवित्र करता है। तो भगवान में प्रेम कैसे हो, इसमें एक बात बताओ आपको, बहुत भाई बहनों के मन में ऐसी जटी हुई है कि तपस्या करने से प्रेम होता है, ठीक है, परंतु प्रेम जो होता है ना उसके खास कारण हमारे को शास्त्रों से मिला है, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है, वो त्याग है, तपस्या है, नाम जप है, कीर्तन है, भगवान के धाम का सेवन है, लीला भगवान की है, ऐसे होता है प्रेम। परंतु प्रेम की खास बात क्या है भाई बहन ध्यान दे, अपनापन, प्रभु में अपनापन, ये बड़ा सरल बढ़िया उपाय है। अपनापन न हो सके ये बात तो अलग है, भगवान मेरे हैं ये खास प्रेम पैदा करने वाली चीज है। आप देखो अपना फटा पुराना कपड़ा हो तो अपना अच्छा लगता है, इन माताओं को पूछा जाए तो काला कलूचा कैसा ही बालक हो अपना बालक अच्छा लगता है, और बालक हो माँ हो कैसी हो काली कलूटी हो गहने कपड़े भी बढ़िया नहीं है, परंतु बच्चा उसी गोदी में जाएगा वही अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया गहने हैं कपड़े हैं रूप भी बड़ा सुंदर है, परंतु बालक का मन उस नहीं खिंचता। बालक का मन खिंचता है मेरी माँ है मेरी माँ। तो ये खास बात है, अपनापन है वो प्रेम पैदा करता है। अपनापन ऐसा हो जिसमें दूसरे में अपनापन ना रहे, संसार में अपनापन न रहे, केवल भगवान में अपनापन हो। मेरे को जैसे मीराबाई को मैं स्वरूप बताया करता हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल ये बात है खास, परंतु इसको पुष्ट करने वाली ये चीज है कि दूसरों न कोई दो मेरा है नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं। फिर अनंत प्रेम हो जाएगा, अनन्य प्रेम होगा। दूसरे में किसी में मन रहेगा तो अनन्य प्रेम नहीं होगा। प्रेम तीन तरह का होता है, तो अनन्य प्रेम अलग होता है। जैसे गाय है, छोटा बच्चा होता है तो गौ बच्चे को छोड़ करके चरने को नहीं जाती है, ले जाते हैं तो चली जाती है, परंतु वहां जंगल में से छूट होते ही सबसे अगाड़ी भाग करके आती बच्चे के पास। तो बच्चे में प्रेम है और घास में भी देव है, जंगल में ले जाते तो घास भी चरती है उसमें भी प्रेम है, और बच्चे में प्रेम है। परंतु खुद को जब मारने लगेगी जैसे मारकर निकालते हैं तो फिर मन के विरुद्ध भी चली जाती है। तो घास में गौण प्रेम है और बच्चे में मुख्य प्रेम है और अपने शरीर में अनन्य प्रेम है। गौण प्रेम है वो तो है घास में स्नेह तो है ही क्योंकि उससे निर्वाह होता है, परंतु बच्चे में मुख्य प्रेम है, छोटा बच्चा होता है। परंतु मार पड़े तब वहां से चली जाती है, तो शरीर में प्रेम अनन्य है। जैसा शरीर में प्रेम है वैसा और में नहीं होता, ऐसे ही भगवान में प्रेम हो तो अनन्य प्रेम हो, भगवान ही अच्छे लगे शरीर से भी। इस वजह से प्राण प्यारा कहते हैं भगवान को, उसका अर्थ है प्राणों से प्यारे हो भगवान, क्योंकि हरेक का प्राणों पर प्रेम अधिक होता है। गाय का भी दृष्टांत लिया था, उसको मारने लगते हैं तो चली जाती है बाहर भाग जाती है। तो प्राण हमारे बने रहे, हम जीते रहे, हमारे को तकलीफ न हो, आराम से रहे, ये एक प्रेम अनन्य होता है। परंतु भगवान का अनुनी प्रेम होता है तो इसकी भी परवाह नहीं होती, प्राण प्यारे भी होते हैं। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वंदु अवध भुवाल सत्य प्रेम जी राम पद। मैं अयोध्या नाथ की प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सत्य प्रेम जय राम पद, जिनका राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। कि उसकी पहचान क्या, कि विशुद्ध दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। भगवान का वियोग होते ही प्यारे से प्यारा शरीर है उसका त्याग कर देते, प्राण त्याग कर देते हैं। तो ये अनन्य प्रेम होता है, वो अन्य में नहीं होता, एक भगवान में। तो शरीर में भी नहीं है, प्राणों में भी कोई मोह नहीं है, प्राण चले जाए बेशक, ऐसा प्रेम होता है, वो अनन्य होता है। प्राण मेरे को प्यारे लगते हैं, जीना प्यारा लगता है। बीमार से बीमार आदमी भी जल्दी मरना नहीं चाहता, आफत आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो वो सह लेता है, पर जीना चाहता कि मैं जीता रहूं, ऐसा प्रेम भगवान में होता है, वो प्रेम अनन्य होता है। और जैसे बछड़े में प्रेम होता तो मुख्य प्रेम है, वो मुख्य प्रेम में अपने घास का प्रेम छोड़ मिलती है गैया, परंतु अनन्य प्रेम पर है। जैसे भगवान में प्रेम वो अनन्य, उस अनन्य प्रेम से भगवान दास बन जाते हैं। भगवान को अनेक काम करने में शर्म नहीं आती, भगवान की लीला सुनने का पढ़ने का काम पड़ा है, उससे असर पड़ता है कि सच्चा जहां प्रेम होता है वो भगवान दास बन जाते हैं। उसे ये पता ही नहीं रहता कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, इस बात का पता नहीं रहता है। अनन्य प्रेम होता है वहां पर, उसकी मुख्यता हो जाती है। लोग कहें इज्जत में इज्जत होगी, बेइज्जती होगी, फजीती होगी, क्या हो जाएगा, पर जहां प्रेम मिलता है भगवान आ जाते हैं। देखो रुपयों में प्रेम सबका होता है, मोह होता है, पर दूसरे के पास ज्यादा रुपये होता है उनका रुपयों में मोह ज्यादा होता है। अधिक रुपयों वाला इतना खर्च नहीं कर सकता, मैंने ऐसी बातें देखी है। जिनके पास थोड़े रुपये हैं वो वक्त पर खर्च कर देता है, जैसे जिसके पास 5 रुपये ही है और कहीं काम पड़े कि भाई यहाँ गायों की बड़े घास की तंगी है, बड़ी तकलीफ है, तो देने में ले देते हैं, तो 5 रुपये जिसके पास में वो 1 रुपया दे देगा, परंतु 100 रुपये जिसके पास में है उसे 20 रुपये नहीं दिए जाएंगे, और 1,00,000 रुपये हो तो 20,000 देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अधिक अपने पास में पैसे होते हैं उतना ही वो कंजूस ज्यादा होता है, वो कृपण ज्यादा होता है। लोगों को तो दिखता है कि ये धनी आदमी है, तो वो धनी नहीं है। धनी वो है जो धन पर अपना अधिकार रखे, और जिस पर धन का अधिकार हो जाता है वो धनी नहीं है। कहते उसको करोड़पति, लखपति, करोड़पति कहते हैं, परंतु मैं तो कहता हूँ लखदास है, करोड़दास है, पति नहीं है। मालिक वो होता है जो खर्च करने में कोई परवाह नहीं, तो खर्च कर ले, वो धन का मालिक होता है, और धन में कंजूसी रहती है वो धन का मालिक नहीं होता है। लोगों को वहम पड़ता है, उस खुद को भी वहम पड़ता है मैं धनपति हूँ, परंतु वो धन का गुलाम होता है। अधिक धन और एकदम नष्ट हो जाए तो हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है, व्याकुल हो जाता है। ऐसे निर्धन आदमी खर्च हो जाए, 5 रुपए के पास में 5 के पास खर्च हो जाए, उतना असर नहीं होता है। तो ज्यादा जहां प्रेम होता है उसकी एक विलक्षणता होती है। जैसे लड़ाई होती है तो लड़ाई में बलवान होता है उसकी विजय होती है, प्रेम की लड़ाई में बलवान की विजय नहीं होती, निर्बल की विजय होती है। 5-4 वर्ष का बालक है और माँ है, दोनों में खटपट हो जाए, बच्चा कहते जा मैं तेरे को माँ नहीं बनाता, तेरे को माँ मानूंगा ही नहीं है, माँ भी कहते जा। तो दोनों में हो जाए तो बच्चा जल्दी पिघलता नहीं है, माँ से रहा नहीं जाएगा, माँ प्यार करेगी, स्नेह करेगी। कारण क्या है कि माँ में स्नेह जागे है, अधिक प्रेम है, तो अधिक प्रेम वाला हार जाता है। ऐसे ठाकुर जी के सामने अगर हम प्रेम करें और चले जाए तो ठाकुर जी हार जाएंगे। कारण क्या है कि ठाकुर जी में प्रेम अधिक है, एक ठाकुर जी में ऐसा प्रेम और किसी में नहीं है, बहुत प्रेम है। वो प्रेम होने के कारण से ठाकुर जी हार जाएंगे। जैसे माँ हार जाती है बच्चे का प्यार करती है, क्या गोदी दे दो, मैं नहीं आऊंगा तेरी गोदी में, आऊंगा ही नहीं, वो गर्द करती है, ले लेती है। इस तरह से एक प्रेम पत्र नाम पुस्तक मैंने देखा है, सब उल्टी बात है। वहां जो संसार की बात है उसमें सबसे उल्टी 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 बात है। जो बलवान हार जाए बोले यह बात उल्टी है ना, निर्बल है वो जीत जाए, तो प्रेम में ऐसी बात है। और जो धन जिसके ज्यादा होता है वो धन की कमी का अनुभव ज्यादा करता है। 1,00,000 रुपए जिसके पास में हो उसके 100, 200, 500 रुपए पैदा हो तो कुछ दिखता ही नहीं, और 1,00,000,000 रुपए पास में हो तो 1,00,000,000 रुपए पैदा होना कुछ दिखता ही नहीं उसको। क्या है 10-20 हजार, 50 हजार, 50 लाख पैदा हो गया, क्या हो गया? तो वो दरिद्री ज्यादा होता है, मांग भी उसमें ज्यादा होती है और घाटा भी उसमें ज्यादा होता है, लाखों हजार रुपया घाटा हो जाता है। गरीब आदमी साधारण अपना खर्चा चलाता है, ऐसे आदमी के पीढ़ियों में कभी 1,00,000 रुपयों घाटा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, होगा ही नहीं। और धनी आदमी को 1-2 लाख का घाटा होना मामूली बात है, घाटा हो गया। परंतु घाटा हो जाने पर उसकी इच्छा होती है वो और ज्यादा हो, और ज्यादा हो, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अधिक से अधिक लोभ बढ़ता है, तो दरिद्र होता ही चला जाता है। तो जैसे अधिक धन होने से अधिक दरिद्री होता है, ऐसे अधिक प्रेम होने पर अधिक दरिद्री होता है। उसको प्रेम थोड़ा भी कहीं मिल जाता है तो भगवान आ जाते हैं। भागवत महात्मा आता है, भगवान बुलाने पर नीच गृह सभी आहू तो नवदेह, बुला रहे कोई प्रेम है, थोड़ा सा प्रेम हो तो भगवान वहां छोड़ नहीं सकते। प्रेम के लोग ही है भगवान, क्यों प्रेम ज्यादा है इस वास्ते भगवान के प्रेम का लोभ है। वो लोभ ऐसा विलक्षण लोभ है, हम लोग समझते नहीं, हम लोग ख्याल में नहीं लाते कि कैसा भगवान में प्रेम है। वो महाराज वो ही जाने, मुझसे वो क्या पता। भगवान जिस पर प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं, तो एक बात आई है भागवत में, आप डरना नहीं, घबराना नहीं। भगवान कहते हैं यस्याह मनुग्रह नामे हरिष्ये तद धनम सनई, जिस पर मैं प्रेम करता हूँ मेरे को अच्छा लगता है उसका मैं धन अपहरण करता हूँ, धन नहीं रखता उनके पास में। अर करो मैं बंधु विच्छेदम, भाई संबंधी कुटुंब से विच्छेद करते हो, सब दुखे न जीवती, दुख पूर्ण जीता है वो। ये भगवान की एक लीला है, परंतु घबराना नहीं, समझे? तो घबराने की बात क्या है कि भगवान में प्रेम नहीं है, धन में प्रेम है अधिक। धन न चला जाए कहीं, भगवान में प्रेम होता है ना हो कोई बात में, धन भी चला जाए ऐसा लोभ होता है। इस बार लोग डर जाते हैं, बट डरने की बात नहीं है। भगवान में अधिक प्रेम हो और धन हो तो दोनों चीज रह जाते। जैसे अम्बरीश आदि संत पड़े, राजा महाराजा हुए, तो उनका प्रेम था, तो प्रेम था तो उनके हरिषे धर्म समय ये नहीं आया कि उनका धन अपहर कर अपहृत कर ले भगवान। बड़े धनी रहे, बड़े राजा महाराजा रहे, भगवान प्रेम रहा। हरिष्य तद धर्म सनई, ये इसका क्या अर्थ है? जो भगवान से भी प्रेम करता है और संसार में भी मोह होता है, तो संसार में मोह होता है तो उसका मोह छुड़ाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान का एक स्वभाव है। एक जगह रामायण सुनता था मैं, तो उन्होंने एक बात बताई। रामायण के वक्ता थे वो, तो बड़ी सुंदर कथा कहते थे। तो उन्होंने एक बात बताई कि हर एक आदमी की कमजोरी होती है। एक हमारे पहलवान मिले थे, वो भी कहते थे कमजोरी होते वहां से वो पकड़ा जाए तो फिर छोड़ नहीं सकता। तो भगवान की भी कमजोरी है, अगर वो कमजोरी समझ ले भगत और उसको काम में ले ले तो भगवान छोड़ नहीं सकते। वो कमजोरी क्या है? तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे व्यापार करते हैं व्यापारी लोग, और वो व्यापार किसी अफसर के हाथ में है, तो ये सज्जन होते हैं बड़े समझदार होशियार, थोड़े नीचे शब्दों में कदमे चालाक होते हैं। तो वे क्या करते हैं कि उस अफसर की स्त्री को डाली देते हैं, बढ़िया चीज है, कपड़ा है, गहना है, बड़ा सुंदर, ऐसा उनकी स्त्री को देते हैं। तो स्त्री के देने से उसकी सिफारिश से उनको अधिकार मिल जाता, परमिट मिल जाता है। तो वे क्या देखते हैं कि अफसर है, बट इसकी कमजोरी कहाँ है? कमजोरी स्त्री के सामने है, तो उसको राजी करो फिर वो पकड़ जाएंगे। ऐसे भगवान की भी कमजोरी है, उसको बहुत आदमी जानते नहीं है। भगवान की कमजोरी का पता लग जाए और वो अगर आप काम में ले लो तो भगवान क्यों नहीं कर सकते, फिर जा नहीं कर सकते। अब कहते भगवान की कमजोरी, भगवान की कमजोरी होती है, भगवान की कमजोरी को भगवान के भक्त समझते हैं, और को पता नहीं। और वो क्या पता भगवान कहाँ कमजोरी है? और घर के आदमी होते हैं, वो घर का भेदी लंका ढावे है, तो घर का भेदी होता है वो समझता है। तो मैंने इस बात सुनी थी, तो भगवान की कमजोरी कहाँ है? एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण है भगवान को, बाण पड़ी हुई, स्वभाव पड़ गया, एक आदत हो गई भगवान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा न हो दूजा, वो भगवान को प्यारा लगता है। दूजा सहारा रखता है धन का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, त्याग का, वैराग्य का भी सहारा रखता है। मैं बड़ा विरक्त हूँ, बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा समझदार हूँ, ऐसे किसी न किसी चीज में अगर वो अधिक महत्व देकर उसमें आकृष्ट होता है तो भगवान का अनन्य प्रेमी नहीं हो सकता। एक बार ये भगवान की कमजोरी है, हमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल हरेक भाई भी कह सकते हैं, पर दूसरो न कोई इसमें फैल हो जाते हैं। तो भगवान में प्रेम कब हो कि भगवान के सिवाय अपना प्राण भी प्यारा न लगे, कोई चीज प्यारी नहीं लगती, सबसे अधिक भगवान प्यार लगे। तो भगवान अनन्य प्रेम के भिखारी है, ये भगवान के घर में घाटा है। ये घाटा क्यों है कि वो प्रेम को पहचानते हैं स्वयं प्रेमी है। जैसे मैंने कहा ना, धन का प्रेमी होता है वो निर्धन होता है, कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण। शास्त्र में आया है कि दरिद्र कौन है, विशाल कृष्ण, जिसकी कृष्णा विशाल है, बहुत ज्यादा कृष्णा है वो दरिद्री है। तो ज्यादा तृष्णा धनी की होती है, गरीब की ज्यादा तृष्णा नहीं होती, धनी की ज्यादा होती है। ऐसे भगवान के प्रेम की बड़ी भारी भूख है, वो प्रेम के भिखारी है भगवान। थोड़ा भी कहीं प्रेम हो जाए तो नीच गृह स्वी लिखा है, नीच नीच से गृह, जो जाति से, वर्ण से, आश्रम से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, सबसे नीच है, परंतु भगवान में प्रेम है। तो भगवान उनका काम कर देते हैं, शर्म नहीं आती। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान ने सारथीपना स्वीकार किया। क्षत्रियों में समुदाय जहां क्षत्रियों का है, उस क्षत्रियों के समुदाय में दासपना स्वीकार करना बड़ा कठिन है। शल्य को कहा था, वरदान भी मांग लिया था, तब भी बड़ी कठिनता पड़ी थी। शल्य राजा थे, भगवान कृष्ण से सारथी जिस गए, उस अर्जुन के साथ युद्ध हुआ, तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन का सारथी बड़ा होशियार है, रथ चलाने में बहुत श्रेष्ठ है, भगवान को काम धंधा करना बहुत आता है, सर्वभाषा वित्ते सब भाषाओं जानते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू कर्नाटकी सब भाषा जानते हैं भगवान, और सब काम जानते हैं, सखुबाई होकर के और गृहस्थ का काम किया, सब बहु होकर के बहु को कैसे करना चाहिए, सास के साथ कैसा करे, पति के साथ कैसा करे, ससुर के साथ, भगवान बड़े होशियार है इसमें, बड़े चतुर है, जो काम करते हैं बस एक ही है, वो ही अनन्य है, और ऐसा सामान समान मिलेगा नहीं, ऐसे काम करने वाले ठाकुर जी, तो सब काम करना आता है, तो सब काम करना आता है, तो रथ चलाना, घोड़े हाँकना ये काम आता है, ऐसा दूसरा सारथी मिलता नहीं। महाभारत में 18 करोड़ की सेना थी, उस सेना में कर्ण ने कहा कि बीच अर्जुन के जैसा सारथी हो मेरे सामने, तो मैं भी बताऊं आपको क्या होता है। बहुत बलवान था, बड़ा चतुर था, बहुत ही श्रेष्ठ था, कर्ण मामूली नहीं था, बहुत विचित्र था कर्ण। यद्यपि ये चार आदमी थे, इनको स्वरूप दास जी ने पांडव सिंधु चंद्रिका में चंदा चौकड़ी कहा है, दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी, ये चंडाल चौकड़ी है, ये बचाए करते काम खराब करते चारों मिल करके। इनके साथ में कर्ण मिल जाता था, चारों में नाम हो गया, परंतु कपट आदि की बात करती तो कर्ण को सुहाती नहीं। दुर्योधन को वचन दे दिया था कि ये सिर्फ इसका ही है, दुर्योधन का ही, तो वो बड़ पसंद नहीं करता। जब लाखा गृहदाह की बात आई, इसे जला दिया जाए, कर्ण उसमें सहमत नहीं हो गया, ये नहीं है। अरे भाई, राज लेना तो सामने लड़ करके ले, कपट करना दूसरों को, जालसा नहीं करना, ये कर्ण को सुहाती नहीं थी। साथ में तो हो जाता, अब क्या करे, उनके वश में हो गया दुर्योधन के, ऐसा कारण था। ऐसा कारण था, बहुत ही बड़ा भारी श्रेष्ठ। तो कर्ण इतना श्रेष्ठ था, इतना उत्तम था, और इतनी कितनी विचित्रता कही जाए तो बहुत विलक्षण थी कर्ण की। मारा गया तो वो दुर्योधन के पक्ष में होने से मारा गया, नहीं तो अर्जुन भी विजय कर ले कठिन बात थी। तो वहां बात चली कि मेरा ऐसा कोई सारथी नहीं है, तो कोई सारथ जानने वाला, रथ का चलाने वाला चतुर से चतुर कौन है? तो राजा शल्य है, वे चतुर है। तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे वरदान मांगा है। जब युद्ध की तैयारी हुई उस समय शस्त्र प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुर्जम्य पांडव, ये जो गीता माता है पहले अध्याय का 20वां श्लोक। तो उस समय सब तैयारी होने पर युधिष्ठिर महाराज बाजे बज गए, युद्ध के बाजे बज गए। बाजे बजने के बाद गीता सुनी, और गीता सुनने के बाद जो भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में गीता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वहां से चले तो युधिष्ठिर महाराज पैदल चले और कौरवों की सेना में जा रहे हैं। तो वहां युधिष्ठिर जा रहे हैं, पीछे भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, पीछे कृष्ण भगवान, ये छों ही जा रहे हैं। तो कौरव सेना में बड़ा हल्ला हो गया, अरे युधिष्ठिर तू क्षत्रिय है, अब युद्ध के समय तू दुर्योधन की शरण देता है, शस्त्र छोड़ करके शरण जाता है, धिक्कार है, मर जाता है, क्या बात है? युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोलते। अर्जुन और भीमसेन को दहम हुआ, क्या बात है, भगवान क्या ठीक ठीक जाता है? तब ये भी पीछे, तो ये तो महाराज भाई के भक्त थे ही, पीछे पीछे गए। तो भीष्म जी के महाराज ने जाकर चरणों में प्रणाम किया, दादाजी मैं युधिष्ठिर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बेटा जय हो तेरी, आशीर्वाद दे दिया। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज, अब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप जिसके विपक्ष में खड़े हो उन हमारी उनकी जय कैसे होगी, कि जय हो जाएगी? तो मैं ये बात पूछता हूँ, पूछो। बड़ा संकोच हुआ युधिष्ठिर को, कितने तुम पूछो, निशंक होकर पूछ लो। तो दादाजी आप सामने खड़े हो विजय के, तू सत कहता है, देवताओं में, दानवों में, मनुष्यों में, राक्षसों में, असुरों में, किसी में भी ताकत नहीं है, मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाऊं, मेरे पर विजय करने किसी में ताकत नहीं है, तो मेरे जय कैसे होगी विपक्ष में आप कर रहे हो? तो मैं तेरे उपाय बताऊंगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप ये बात बताओ कि बोल, बोल संकोच होता है कि बोल क्या बात है, ये बताओ आप मरोगे कैसे, उपाय बताओ। ये तो ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी मरने का विचार नहीं है मेरा, तेरा ये वरदान मेरे में थाती रूप से रहा, फिर मांगना, फिर बताऊंगा, अभी नहीं बताता, क्यों भाई मेरा मरने का विचार नहीं है, ये विचार से मरते मरा नहीं, विचार से मरे ही नहीं। शांतनु का पिताजी का वरदान था कि तुम चाहोगे तो अभी मरोगे, बेचार नहीं तुम नहीं मरोगे, तो अभी मेरा विचार नहीं है। 9 दिन हो गए युद्ध करते करते, अर्जुन ने कहा महाराज ये भीष्म जी के सामने युद्ध करना तो बड़ा कठिन काम है, जो धीरे वीर जाते हैं, जैसे रात्रि में पतंगे अग्नि में जाते हैं तो जाते जाते वीर आता नहीं कोई पीस गई, ऐसे भीष्म जी के सामने मर जाते हैं सभी। और भीष्म जी जब कमर कसते थे युद्ध के लिए तो कमर कसते कर 10,000 योद्धाओं को मर हुआ, 10,000 योद्धाओं को मार देना कोई मामूली बात है? 10,000 खेत में ढेले पड़े हो मिट्टी को, और 10,000 एक जवान को कह दो 10,000 फोड़ दे, मुश्किल हो जाए मेरा ढेला फोड़ना। शूरवीर थे, 10,000 योद्धाओं को मारते हो जाना। तो 9 दिनों में अर्जुन वीर खबर घबरा गए कि महाराज मैं ऐसी विजय नहीं चाहता, क्षत्रियों का अंत हो जाएगा, मैं अपने एकांत में जंगल में रह करके भजन स्मरण करूंगा, ये तो नहीं मारेगा। नहीं नहीं, तुम युद्ध कर, भगवान ने कहा युद्ध करो। तो कैसे युद्ध करूं? तो फिर कहा कि अब पूछो विश्वेश्वर महाराज को, भीष्म जी को। तो 9 दिन की रात्रि में गए हैं वहां, वहां पूछा दादाजी आपने कहा कि मैं तेरे को बताऊंगा मेरी, तो कैसे विजय करूंगा? तो कहा ये शिखंडी है, पहले जन्म में कन्या थी, लड़की थी, और इस जन्म में भी जन्मी जो लड़की थी, पीछे ये सुनाकर्ण के वरदान के कारण से पीछे पुरुष बन गया है, तो मैं उसको स्त्री समझता हूँ, ये मेरे सामने आएगी तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। स्त्री पर हाथ कभी चलाना नहीं चाहिए किसी पुरुष को भी, कभी भी स्त्री पर क्या हाथ चला, तो मैं स्त्री समझता हूँ, तो सामने मेरी ये आ जाए तो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, परंतु इसके बाणों का मरूंगा नहीं मैं। अब मच्छर खावे तो कोई मरता थोड़ी आदमी, सिगटी के बाणों से मरूंगा नहीं। तो बाण तो चलावे अर्जुन, सामने रखे शिखंडी को, फिर बाण चलावे, तो इससे मैं मर जाऊंगा। शस्त्रिया पर सो गए महाराज महीनों तक पड़े रहे, बाण बेदन हो गया, बाण नीचे सामने निकल गए, उस बाणों के ऊपर सैया पर, बाणों सैया पर ऐसे सोए हुए थे, और दो पर्व है अनुशासन और क्या शांति पर, दो पर्व उपदेश दिया है, ऐसे विलक्षण वीर थे। उन्होंने ये बात बताई तो कर्ण बड़ा ऐसा था, तो कर्ण कहता है कि मेरे कोई सारथी ऐसा नहीं है जैसा अर्जुन के है, तो कौन है? तो कहता शल्य है, ये सारथी है। तो शल्य की बात क्या हुई कि भगवान युधिष्ठिर महाराज जाकर पहले भीष्म जी से प्रणाम किया, फिर द्रोणाचार्य से प्रणाम किया, और उन सबने एक श्लोक अर्थस्पुरुषो दासस्वरसो न कशित सत्यम महाराज बधोस नरसेन कौरव ही युद्ध, तो भैया मैं इधर भी करूंगा। तो शल्य के भी मामले तो इसने पूछा, अलग अलग बात पूछी है, द्रोणाचार्य से पूछा कि आप कैसे मरोगे, कि मैं कोई अप्रिय बात सुन लूंगा तो मैं सच छोड़ दूंगा, फिर मैं मर सकता हूँ। शल्य के पास गए, तू क्या चाहता है? आशीर्वाद दिया, शल्य का चाहता है कि महाराज इस सेना में घोड़े चलाने के लिए, रथ चलाने के लिए जितने कृष्ण तैयार होशियार है, ऐसा 18 अक्षोण में कोई नहीं, एक शल्य है, आप कर्ण की सारथी बनोगे, लोगों में ऐसी बचार हो जाएगा आपको सारथी बनाएंगे, तो आप क्षत्रिय राजा होते हुए सूत के सारथी बनने में बड़ी फजीती हो गई, क्योंकि आप सारथी स्वीकार कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने प्रार्थना कर ली कि मामा जी ये आप स्वीकार कर लेना। तो कर्ण को आप कहते रहना, गए तू क्या टिक सकता है इनके सामने, अर्जुन के सामने क्या टिक, ऐसा कहते रहना, हमारा काम हो जाएगा। तो शल्य सारथी बनने में इनकार करता है, क्षत्रिय समुदाय में सारथी बनना नीचा काम है, मगर भगवान ने अपने आप स्वीकार किया। दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ में चले गए, तो कृष्ण भगवान को रण का निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन पहुंचे पहले। दुर्योधन समझता है कि कृष्ण के पक्ष के हैं, उनको अपना बना लो, फिर अपने पक्ष तो अपने है ही है। तो वहां गए तो कृष्ण भगवान सोए हुए थे, तो सिन्हा ने सिंहासन पर आता उस पर दुर्योधन बैठ गए। अर्जुन पीछे पहुंचे, क्योंकि जिसकी लगन होती है ना वो जल्दी काम करता है, तो बैरी को अपने बस में करना, तो दुर्योधन पहले पहुंचा। अर्जुन पीछे पहुंचा तो भगवान सोए हुए हैं, तो वो चरणों के सामने खड़ा रह गया हाथ जोड़ करके। भगवान की नींद खुली, देखा तो सामने अर्जुन। ओ अर्जुन कैसे आए भाई, कहां महाराज? इतने में दुर्योधन बोला कि ये पहले में बोल दे कहीं, महाराज पहले मैं आया हूं। अच्छा, ऐसे देखा भगवान, तेरी नजर तो होगी पहले, आप आए बढ़िया से, आप आए पहले हैं, पर तुम मिला अर्जुन पहले है। किस वास्ते आए गए? रणमंत्र है, युद्ध करने के लिए मेरे पक्ष में रहे। दुर्योधन ने ऐसा कहा, मैं पहले आया हूं, और श्रेष्ठ पुरुष होते हैं पहले निमंत्रण आता है उसको स्वीकार करते हैं, और आज दुनिया भर में श्रेष्ठ पुरुष आप हैं। दुर्योधन को मतलब लेना था, श्रेष्ठ नहीं मानता था इतना, कृष्ण मान लो बड़ा मायावी है, बड़ा ठग है, ऐसा है, ऐसा मानता था भाव नहीं था। पर पूछो क्या, हमारा श्रेष्ठ पुरुष आप हो, पहले मैं आया हूं, निमंत्रण मेरा है, मेरी तरफ पधारो। भगवान ने कहा, भाई आप बात तो ठीक है, आपने कहा आप आए पहले, परंतु मैंने देखा पहले अर्जुन को, तो अर्जुन भी अधिकारी हो गया और तुम भी अधिकारी हो, अब दोनों तुम अधिकारी हो, तो मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक तरफ तो हमारी एक अक्षोहिणी सेना रहेगी, एक अक्षोहिणी सेना, और एक तरफ मैं रहूंगा निशस्त्र, शस्त्र नहीं रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा मैं, एक पक्ष मैं रहूंगा। ये दोनों पक्ष है, इनमें ये बात है, देखो दुर्योधन तुम बड़े हो, ये भीम के समान था, बड़ा अवस्था था, अर्जुन छोटा है, तो कोई भी बंटवारा करना हो तो उसमें दो पांती रखी जाए, तो पहले अवसर छोटे को दिया जाए, भाई तुम अपनी उछल पांती ले लो। तो पहले अर्जुन को कहा जाए कि तुम चाहे तो ले लो, एक तरफ अक्षोहिणी सेना शस्त्रों से सजी धजी, और एक तरफ निशस्त्र कृष्ण भगवान। अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम छोटे हो ना, इस वास्ते मैंने दो विभाग कर दिया, अब तुम ले लो चाहे सो ही। तो अर्जुन बोला कि मैं तो आपको ही लूंगा। दूर पर खलबली मच गई कि कहीं ये सेना ले लेगा, गिनी नहीं अर्जुन ने। तो अर्जुन ने कहा, दुर्योधन का ठीक है, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया बात, फिर कोई मेरे मित्र क्या हुआ कि आज कृष्ण को ठग लाया मैं, एक अक्षोहिणी सेना ले ली उसकी। तो अर्जुन के पक्ष में भगवान रहे निशस्त्र। जब दुर्योधन चला गया तो कह रहे अर्जुन, अरे ये क्या किया तेने, मैंने अवसर दिया था, अगर दुर्योधन को अवसर देता तो वो सेना ही लेता, मेरे को लेता नहीं, और तेरे पास मैं भी पांती आता, मैंने पहले अवसर दिया तेरे को कि एक अक्षोहिणी सेना वो ले ले, मेरे को महाराज मेरे को संख्या थोड़ी बढ़ानी है, सेना की संख्या बढ़ जाए ज्यादा, मेरे को तो विजय चाहिए महाराज, विजय जिस तरफ आप होगे उसी होगी, तो मैं तो आपको जाऊ कि तू मेरे से कराएगा क्या, बना मैं युद्ध नहीं करूंगा, निमंत्रण तो युद्ध का है, भोजन का तो निमंत्रण है ही नहीं, जाके भोजन कर देना, युद्ध करना क्या है। तो महाराज तू तो क्या कराएगा, महाराज आपको मैं सारथी बनाऊंगा, रथ आंकने काम दूंगा, रथ आगे शस्त्र नहीं चलाओगे तो घोड़े नहीं चल चलाओगे, घोड़े चलाऊंगा। तो भगवान इतना घोड़ों के चलाने में, रथ के चलाने में भगवान बड़े चतुर थे, और उन्होंने स्वीकार किया। अर्जुन ने कह दिया कि मेरे मन में थी बहुत वर्षों से कि मेरा रथ भगवान चलावे, तो अब आप सब चलाओगे नहीं, घोड़े चलाओ चाबू लेकर के, ठीक है राजी हो गए, बहुत अच्छा किया था, ठीक किया, कुछ राजी हुए, पहले धमकाया फिर ये क्या गलती करी। तो इतने होशियार थे, अब रथ चला ले, रसवानी बने। अब एक देख विचित्र बात बतावे, पहले अध्याय में गीता जी पहले अध्याय में भी आता है, भीष्म जी महाराज ने तस्य संजन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह संघ नाद विनोदोचि संघ दद्मौ प्रसापवान। भीष्म जी ने संघ बजाया, क्यों भीष्म सेनापति थे, उन्होंने संघ बजाया पहले, फिर कौरवों के बजे, फिर पांडवों के बाजे बजे, तो पांडवों के बाजे बजे सेना के तथा श्वेते है जूते महती स्तरे स्थित माधवा पांडव स्थे भगवान थे और अर्जुन था, तो उसमें दोनों ने संग बजाए, दोनों ने संग बजाए, सबसे पहला भगवान संग बजाया। पांचजन्यम ऋषि गुरु देवदत्तम धनंजय पांचजन्य नाम का संग भगवान ने बजाया। मेरे को तो आश्चर्य आता है, इतना क्षत्रियों का समुदाय था, बोला कोई नहीं, बोलना चाहिए था कि मैं आप सारथी हो, अगर घोड़े रखा आप युद्ध की घोषणा करता संघ बजा देना पहले, आपका क्या अधिकार है, बोला कोई नहीं, संघ बजाए पहले। अर्थ क्या हुआ, ये छोटे हो चाहे बड़े हो, ये जो आसन स्वीकार करे वो बनाता है, नहीं तो ऐसे है स्थानम प्रधानं खलु योग्यताया, योग्यता का स्थान प्रधान होता है, कहीं वासा प्रधानं खलु योग्यताया, तो स्थान है वो योग्यता को योग्यता से मिलता है। तो महाभारत में सारथी बना करना, क्षत्रियों के समुदाय में सारथी बनना बड़ा छोटा काम है, पर भगवान को छोटा काम भी अच्छा लगता है, भगवान वहां प्रेम को देखते हैं, इज्जत बेइज कोई सर करते ही नहीं, ख्याल कुछ करते ही नहीं, रस चलाते हैं, और रस चलाते हुए छोटे पर संघ बजाए सबसे पहले, चूनिया किसी ने कोई नहीं बोला, ये छोटे बढ़ जाओ बेशक, ये छोटे स्थान से कपड़ों से अधिकार से बढ़ रही होते, स्वतः बड़े होते, बड़े ही होते, कहीं चले जाए किसी जगह बैठ जाए बड़े ही होते हैं। तो भगवान ने संघ बजाए सबसे पहले युद्ध की घोषणा में, इस वास्ते प्रेम किस कैसे हो, प्रेम प्रेम अपने आप को दे दे, जैसे अर्जुन ने एक अश्वनी सेना छोड़कर निःशस्त्र भगवान को लिया युद्ध के लिए भी, महाराज मैं तो आपको चाहता हूँ, तो भगवान को समझता था, जानता था, जानकारों में देखा जाए तो अर्जुन विशेष जानते नहीं थे कृष्ण भगवान को, जैसे भीष्म जी जानते थे, विदुर जी जानते थे, माता कुंती जानती थी, ये विशेष जानते थे भगवान को, अर्जुन दो नंबर में जानते थे, परंतु फिर भी अर्जुन की इनकी मित्रता थी, बहुत स्नेह था, सैया सनातन विकंठन भोजन आदि स्वीकार सहायता वर्णन, तो प्रेम जहाँ होता है वहां प्रेम खिंच जाते हैं, और छोटा बड़ा पद नहीं देखते भगवान, चाहे सो काम करो लोग काम करते हैं, घोड़े हांकने का काम, आप अपने रथ पर चढ़ कर जाते हैं, अपने शिविर से दारू सारथी था उसके साथ चढ़ कर जाते हैं, वहां उतर करके और घोड़ा खोलते और घोड़ों को रथ के लगा करके और रख करके फिर अर्जुन को चढ़ाते, हाथ दे करके अर्जुन को चढ़ाते, चढ़ा करके पीछे आप चढ़ते, सारथी का काम पहले नहीं चढ़ता, वो रथ ही चढ़ जाए, वहां नौकर का काम पहले थोड़ी पहले चढ़ जाए, पहले नहीं चढ़ते थे, अरे उतरते थे पहले उतरते थे, घोड़े में रकम पकड़ कर हाथ दे कर अर्जुन उतारते थे, ठीक नौकर काम करे जैसा काम किया अर्जुन के साथ भगवान ने। 18वें दिन जब समाप्त हुआ उस दिन भगवान ने कहा अर्जुन तुम पहले उतर जाओ, अर्जुन उतर जाओ तुम पहले उतर जाओ, और भगवान उतरे और आग लगी सब जगह कि अस्त्र शस्त्रों से सजा हुआ, द्रोणाचार्य और भीष्म बड़े अस्त्र चलाए, मैंने एक कहा कि युद्ध समाप्ति तक ये रहेगा मेरे संकल्प से था, अब मैं उतरूंगा फिर नहीं रहेगा, अर्जुन को पहले उतार दिया, ये सदा पहले आप उतर दे पीछे, तो भगवान को काम करना पड़ता छोटे से छोटा, कब कि जब अनन्य प्रेम हो जाए, मेरे तो गिर मेरे गोपाल दूसरा न कोई, तो भाइयों बहनों अगर प्रेम करना चाहो तो ये बात है कि भगवान है वही हमारे हैं, उनके सिवाय कोई नहीं है। मेरे दूर गोपाल दूसरा कोई, अपनापन है ये प्रेम की खास बात है। तपस्या आदि से भगवान इतने राजी नहीं होते जितने अपनापन में राजी होते हैं। यशोदा मैया क्या था, यशोदा मैया मेरा लाला है, बांध दिया मरा, नाम नहीं वनाश यदि वो पास बद्धम, दाम नहीं वो जो ब्रज वधु यत्न बद्धा, नाम नहीं वनाश यदि वो पास, संसार का संसार रूपी फांसी से मुक्त करने के लिए भगवान का नाम ले ले तो मुक्त हो जाए। वो भगवान स्वयं यशोदा मैया रस्सी में बंधी है भगवान, तो वो रस्सी में प्रेम में बंधे हुए हैं। अब यशोदा मैया लोग कहते हैं भी पूतना है, उसको जसमत की गति पाई, लाल दिलो मुख दे करार, जहर देने वाले को मुक्ति दी भगवान। अब जहर देने वाली पूतना को मुक्ति दी तो यशोदा मैया वो क्या देंगे, प्रेम से दूध पिलाती प्यार करती है तो उसको क्या क्या दे, अपने आप को दे दिया। अब वो बांधे तो बंध जाए, छोड़े तो छूट जाए, बांध दिया तो अब छूट नहीं सकते भगवान। यशोदा मैया तो अपने आप को दे देते हैं प्रेम में, भगवान अपने आप को दे देते हैं, दे करके भी फिर ऋण देते हैं, ऊर्ण नहीं होते। गाता है महादेव 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 जी योगदे एक न मुक्ति माप्त होती बाभ्याम ऋणी संभू ऋणी हो। तीन बार कोई क्या दे महादेव महादेव कहते मुक्ति तो एक से हो जाती है और दो बार का ऋणी हो जाते हैं, शंकर के पास ऋणी हो गए। ऐसे भगवान का नाम लेने वाले प्रेम से नाम ले, एक नाम से गोविंद का उद्धार किया, आधे नाम से ऐसे उद्धार कर देते हैं, फिर भगवान के ही कह जाते हैं। जो अपना पर्व है, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम तो चातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, ये अनन्य भाव है। राम घन श्याम चातक तुलसीदास, पपैया वर्षा की बूंद कोई पीता, ऐसे अनन्य भाव हो जाए भगवान प्रेम हो जाए। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजनन दूसरा, प्रेम तो अपनापन है ना, ये मनवा भगवान में मन खींचता है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजनन दूसरा, अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान, ऐसे विचार करके और भगवान के भक्त होते, भगवान के गुण गाया करते, भगवान के चरित्र गाया करते हैं, भगवान की लीला गाया करते हैं, उनका चिंतन किया करते हैं। देखिए बातें विचित्र है इसमें, प्रेम के समान कोई भजन नहीं है और मुनि सदा भगवान के गुण गाया करते हैं, उल्टी बात है। प्रेम किया करते ये बात तो ठीक है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। कहते हैं सबसे बढ़िया तो गंगा जी है, इस वास्ते लोग जमुना जी आया करते हैं, तो कहां बैठे बात। अरे बढ़िया गंगा जी है तो जमुना जी क्यों जाते हैं, अगर प्रेम बढ़ गया तो गुणगान क्यों करते हैं। गुणगान से भगवान में प्रेम होता है, तो प्रेम अपने भगवान के गुण गाओ, यश गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो। मैं तो बहुत कहता हूँ तुम भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से भगवान बहुत राजी होते हैं और भगवान के चरित्रों से भी भगवान राजी होते हैं और भगवान के चरित्र से और ज्यादा राजी होते हैं। तो भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनकी वाणी बोलो, उनके पद गाओ और भगवान का चरित्र का चिंतन करो और लीलाओं का चिंतन का लीला का अनुवाद करो, इससे प्रेम होता है। नारायण 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 नारायण।